नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लॉरेंसो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मुंबई में वेल्स सम्मेलन में भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात लगभग 8 खरब 25 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा अभ्यास किया। वायुसेना ने आपातकालीन उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया में नई संसद के चुनाव के लिए मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लॉरेंसो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंगोला के राष्ट्रपति भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे।
अंगोला के राष्ट्रपति का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रपति लॉरेंसो से मुलाकात करेंगे। अंगोला के किसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा 38 वर्षों के बाद हो रही है। राष्ट्रपति लॉरेंसो कल नई दिल्ली में एक व्यापार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023-24 के दौरान 4 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया है। विकास भागीदारी, क्षमता निर्माण सहयोग और रक्षा संबंध भी बढ़ रहे हैं। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सहित कई मंचों पर एक दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय के सहयोग से अटॉर्नी जनरल कार्यालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। अटॉर्नी जनरल आल वेंकट रमणी ने कहा कि सम्मेलन में बड़ी संख्या में मध्यस्थ और मध्यस्थ संस्थान एक साथ आएंगे, ताकि वे मध्यस्थता प्रक्रिया पर चर्चा कर सकें और श्रेष्ठ परंपराओं को साझा कर सकें। कानून और न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजय अरोड़ा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए वादी को मध्यस्थता प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी की अमृतसर इकाई ने 4 राज्यों में 4 महीने की लंबी कार्रवाई के बाद नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 547 करोड़ रुपए की कीमत की नशीली दवाइयां जब्त की गईं और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में एनसीबी को बधाई देते हुए कहा कि भारत नशीली दवाइयों की तस्करी पर तेजी से नकेल कस रहा है। अब खबरें मुंबई में चल रहे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव से। वेव्स 2025 के तीसरे दिन आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक विकास अनिवार्यता शीर्षक से अपनी तरह का पहला श्वेत पत्र जारी करेंगे। श्वेत पत्र भारत के तेजी से बढ़ते लाइव मनोरंजन उद्योग का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2024-25 पर सांख्यिकी पुस्तिका भी जारी की जाएगी। सम्मेलन में आज सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी होगा। ये सामुदायिक रेडियो केंद्रों को एक दूसरे से जुड़ने, सीखने और सर्वोत्तम परंपराओं को साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। आइए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं मुंबई, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र। दीपेंद्र, सामुदायिक रेडियो संचार का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है और इसी की संभावनाओं को लेकर आज सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। ऐसे में सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा होने की संभावना है?
इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में सामुदायिक रेडियो में नवाचार के माध्यम से इसकी प्रभावशीलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार का लक्ष्य हर जिले में एक सामुदायिक रेडियो खोलना है। सम्मेलन के दौरान कई सत्र होंगे जिसमें सामुदायिक रेडियो की बदलती भूमिका पर कई वरिष्ठ लोग अपने विचार साझा करेंगे। देश भर के 400 से अधिक कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसमें 12 उत्कृष्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों को उनकी सेवा और समुदाय में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। जी सिद्धार्थ।
दीपेंद्र, वेव्स सम्मेलन के तीसरे दिन आज कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम होने वाले हैं?
इस सम्मेलन के तीसरे दिन आज भी मनोरंजन जगत, खेल जगत और उद्योग जगत की कई प्रमुख हस्तियां विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे। इनमें प्रमुख रूप से फिल्म अभिनेता अनिल कपूर, क्रिकेटर अनिल कुंबले, जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर और नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सैंडोज शामिल हैं। इसके अलावा द आर्ट ऑफ एक्टिंग सत्र को आमिर खान संबोधित करेंगे। वहीं शाम के समय लोक गायिका इला अरुण, भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी के साथ साथ मलेशिया, मेक्सिको और इंडोनेशिया के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। सिद्धार्थ।
दीपेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले वेव सम्मेलन में कल क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का पहला सत्र संपन्न हो गया। इसके अंतर्गत 32 अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में जीतने वाले एक प्रतिभागी रोहित शुक्ला ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में अपने अनुभव साझा किए।
पूरी कहानी राजा मेदनी राय और औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान के युद्ध पे आधारित है। पूरे कहानी को हमने सोहराई पेंटिंग स्टाइल में दिखाया है, जिसे पूरी ज्यूरी ने और दर्शकों ने काफी सराहा और इसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित कर हम सभी पलामू वासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि इस पहल के साथ निर्माता नए अवसरों की दुनिया में कदम रख रहे हैं।
यंग क्रिएटर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। वेव्स के माध्यम से वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट एक अच्छी शुरुआत हुई है, जिससे कि मीडिया और एंटरटेनमेंट के जगत में एक ये बड़ा बेंचमार्क बनेगा। दुनिया भर से इंटरेस्ट है, नौजवानों में खासकर बहुत इंटरेस्ट है। ग्लोबल मीडिया डायलॉग भी हुआ, उसमें एक डिक्लेरेशन भी सभी ने अडॉप्ट किया है और सबने इस कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस को सराहना की है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात लगभग 8 खरब 25 अरब डॉलर के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष के 7 खरब 78 अरब डॉलर के निर्यात की तुलना में 6.01% की वृद्धि हुई है। सेवा निर्यात 13.6% बढ़कर 3 खरब 87 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 25 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में 1 अरब 98 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है और ये बढ़कर 6 खरब 88 अरब 13 करोड़ डॉलर हो गया है। भारतीय वायुसेना ने कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एक बड़ा अभ्यास किया। इसमें वायुसेना ने अपनी उड़ान क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपनी तरह के इस पहले प्रदर्शन में वायुसेना के रफाल, जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI और MiG-29 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। युद्ध के दौरान आपातकालीन अभियानों और प्राकृतिक आपदाओं के समय हवाई पट्टी को वैकल्पिक रनवे के रूप में उसकी दक्षता को जांचने के लिए एयर शो का आयोजन दिन और रात के समय किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश रात में एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों के उतरने की क्षमता वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
एयरफोर्स की जो भी डिमांड थी, वहाँ पे बेस हॉस्पिटल बनाने की, वहाँ पे CCTV कैमरे लगाने की, तो नाइट लैंडिंग से संबंधित जो भी तैयारियां सभी पूरी कर ली गई हैं और एयरफोर्स भी पूरी हमारी तैयारियों से संतुष्ट है। जहाँ तक पब्लिक की बात है, कोई भी एंट्री बिना पास के नहीं होगी। 3 तारीख को हम लोग पब्लिक को भी पास देंगे और उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में संपर्क करना होगा।
भारतीय सेना ने कल रात जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की अकारण गोलीबारी का करारा जवाब दिया। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों से बेवजह गोलीबारी की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी और मध्य भाग में मंगलवार तक गरज चमक के साथ ओले गिरने और तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तेलंगाना के 20 जिलों में बुधवार तक आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि राज्य के कई भागों में मौसम के उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये दिन प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर यांत्रिक मेधा का प्रभाव। ये विषय पत्रकारिता, मीडिया और प्रेस स्वतंत्रता को बदलने में यांत्रिक मेधा के तेजी से विकास और उपयोग पर प्रकाश डालता है। ऑस्ट्रेलिया में संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी है। प्रतिनिधि सभा की सभी 150 सीटों और सीनेट की 76 में से 40 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से मैदान में हैं। उनका मुकाबला कंजर्वेटिव लिबरल नेशनल गठबंधन के नेता पीटर डटन से है। इसके अलावा ग्रीन्स पार्टी के नेता एडम बैंड्स भी मुकाबले में हैं। बड़ी संख्या में छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। आधिकारिक परिणाम के लिए कई दिन लग सकते हैं। लेबर पार्टी 2022 में 9 साल बाद सत्ता में लौटी थी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रन से हरा दिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 224 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 6 विकेट पर 186 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भुवनेश्वर में कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आज फुटबॉल क्लब गोवा का सामना जमशेदपुर एफसी से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच का विजेता वर्ष 2025-26 एएफसी चैंपियन लीग 2 के प्रारंभिक दौर में भी जगह बना लेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ आज पर्थ में 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच खेलेगी। भारत ने इस दौरे में अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। अगले वर्ष होने वाले विश्व कप और इस साल के अंत में यूरोप में होने वाले एफआईएच हॉकी प्रो लीग को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम नए संयोजन और रणनीति भी आजमा रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद सिद्धार्थ। पहलगाम आतंकी हमले पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान को लेकर टिप्पणी को कई अखबारों ने विस्तार से दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा, आतंकियों को पकड़ने के लिए भारत से सहयोग करे पाक। हिन्दुस्तान ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, आतंकियों के सफाए में पाकिस्तान मदद करे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों के प्रदर्शन पर देशबंधु ने सुर्खी दी है, राफेल जगुआर ने दिखाई ताकत। नवभारत टाइम्स लिखता है, एक्सप्रेसवे से रणभूमि की तैयारी और यहां से रात में भी जेट उड़ान भर सकते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट कल खुलने की खबर को लगभग सभी अखबारों ने विस्तार से सचित्र प्रकाशित किया है। हरिभूमि की सुर्खी है, कपाट खुलते ही हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी घाटी, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, मंदिर को 108 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया गया। दैनिक भास्कर लिखता है, केदारनाथ में रिकॉर्ड पहले दिन 30,000 श्रद्धालु पहुंचे, दर्शनार्थियों की ये अब तक की सर्वाधिक संख्या। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रेस की जिम्मेदारी को विभिन्न समाचार पत्रों ने विस्तार से दिया है। राजस्थान पत्रिका स्वतंत्र पत्रकारिता की नई चुनौती को पहचाने शीर्षक से लिखता है, सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं का विस्फोट। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पत्रकारिता जहां जाती है उसका सच वहीं महकने लगता है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता का कोई दिन निश्चिंत नहीं है, ये हमेशा से स्वतंत्र ही रही है और आगे भी रहेगी।
धन्यवाद फरहत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लॉरेंसो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मुंबई में वेव्स सम्मेलन में भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात लगभग 8 खरब 25 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा अभ्यास किया। वायुसेना ने आपातकालीन उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया में नई संसद के चुनाव के लिए मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।